हरे कृष्णा। श्री बरसाना धाम में आप सबका स्वागत है। आप में से कितने लोग सबसे पहली बार आए हैं? हरे कृष्णा। बरसाना में सबसे पहली बार सब लोग, इतने लोग पहली बार आए हैं। तो आज 31 तारीख है ना, 31 तारीख जनवरी 2012 के दिन आपका सबका श्री बरसाना धाम में स्वागत है। और विशेष बात यह है कि 28 तारीख को वसंत पंचमी थी। वसंत पंचमी बहुत सुंदर उत्सव होता है जिसमें वसंत ऋतु का आरंभ होता है और नए नए फूल जो आते हैं, खिलते हैं, उसके द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। और वसंत पंचमी में श्री बरसाना धाम में होली का उत्सव आरंभ होता जाता है। 40 दिन की होली होती है और जो गौर पूर्णिमा हम मनाते हैं, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा, आज से आप गिनेंगे तो 40 दिन मिलेंगे आपको। और वसंत पंचमी से यहाँ पर रंग उड़ना शुरू हो गया है और बरसाना धाम जो है वो जो होली का उत्सव है उसका मूल उगम बरसाना में। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि बरसाना में सेवा करने का महत्व क्या है, क्योंकि कैंप तो सब जगह लगते हैं भारत भर, लेकिन जब ये ऐसी सेवा बरसाना में लगती है, शुरू होती है या उसका आयोजन होता है, तो उसका लाभ जो है वो हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो कई अनंत गुना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा भगवान का जो तत्व है उसको समझना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में सब लोग भगवान की चरणों की धूल चाहते हैं। भगवान परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है और सब जीव उनके अंश हैं। उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल पोटेंसी। भगवान की तीन शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया है, परास्त शक्तिर विविधैव सूयते। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो सभी उनके सृजनों का, यानी निर्माणों का, यानी लोगों का नियंत्रण करते रहते हैं। वो स्वयं कुछ काम नहीं करते हैं, केवल लीला करते हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा पूरे निर्माण का नियंत्रण होता है, मैनेजमेंट, व्यवस्थापन होता है। उसमें प्रमुख शक्ति जो है वो है अंतरंग शक्ति। जिन लोगों को पहली बार सुन रहे हो लिखो, आपको बहुत आनंद आएगा उसमें और लाभ भी होगा। एक शक्ति होती है अंतरंगा शक्ति, प्रमुख शक्ति भगवान की, और दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, और तीसरी है मार्जिनल पोटेंसी। और हम सब लोग जो हैं वो मार्जिनल पोटेंसी में आते हैं, भगवान की तटस्था शक्ति है हम। और बहिरंगा शक्ति जो है वो पार्वती देवी है, दुर्गा देवी। दुर्गा यानी जो दुर्ग को संभालती है वो दुर्गा देवी। दुर्ग यानी ये भौतिक दुनिया जिसमें जन्म मृत्यु के चक्र में हम सब लोग फंसे रहते हैं, उसको दुर्ग कहा गया है, जिसमें हम लोग को डाल दिया है शरीर के बंधन ने। ऐसा बंधन कि हम सबको लगता है कि हम बड़े फ्री हैं, कोई श्रृंखला नहीं हमारे ऊपर, कोई चेन नहीं है, कोई जकड़ के रखा नहीं है, अपनी मनमानी कर सकते हैं हम। ऐसा भ्रम होने पर भी हम पूर्णतः बद्ध हैं जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के साथ में। यही इसका बड़ा रहस्य है। जेल में कैसे सब दीवारें लंबी लंबी होती है, चेन डाल के रखते हैं, पत्थर फोड़ना पड़ता है, लेकिन ये दुर्ग ऐसा है कि इसमें लोगों को लगता है कि हम स्वच्छंद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी त्रिगुणों द्वारा नियंत्रित है सब लोग यहाँ पर। तो ये जो बहिरंगा शक्ति जो है इसके तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों द्वारा बहिरंगा शक्ति सभी हम जैसे सभी जीवों को, जो मनुष्य है और मनुष्य नहीं है, इन सभी जीवों को बांध के रखती है। कभी सत्वगुण का प्रभाव है, कभी अच्छे विचार है, कभी दुनियादारी के भोग लेने के विचार है रजोगुण के, तो कभी किसी को हिंसा, कभी क्रोध, कभी द्वेष, ऐसे तमोगुणी विचार आते हैं हमारे मन में। एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में सभी गुणों का अनुभव हम करते हैं, तो ये बहिरंगा शक्ति है। लेकिन भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की आनंद देने वाली शक्ति है, भगवान को, भगवान की लीलाओं में सहायता करने वाली शक्ति है। उसके भी तीन भाग हैं, लादिनी, संदिनी और संवित। और ये संदिनी, संवित और लादिनी, इसका अर्थ है सत चित आनंद। सत यानी हम सब लोग आत्मा से अमर हैं, आत्मा हमारी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वो सत, सत पोटेंसी है, सत शक्ति। और चित शक्ति वो है जिसमें से ज्ञान प्राप्त होता है। चित यानी ज्ञान, हम सबके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, लेकिन शरीर से बद्ध होने के कारण हम सब लोग ज्ञान सही रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अज्ञान में फंसे रहते हैं शरीर के बंधन से, प्रभाव से और आवरण से। और आनंद जो है, सब जीव आनंद के पीछे भाग रहे हैं। हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, भगवान को भी आनंद चाहिए। तो ये आनंद की शक्ति भी ये अंतरंगा शक्ति का एक भाग है, इसलिए हमारे अंदर वो प्रवृत्ति है आनंद प्राप्त करने की। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का व्यक्ति, व्यक्ति रूप है। जब अंतरंगा शक्ति व्यक्ति रूप बन जाते तो वो राधा रानी है। और शास्त्र में लिखा है ऐसे, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य विलासे रास आस्वादन कोरी। भगवान एक है लेकिन लीला के कारण वो दो बन जाते हैं, राधा और कृष्ण। इसलिए भगवान अपने बाहर कभी किसी वस्तु को आनंद लेते नहीं है, सब चीज जो है उन्हीं का विस्तार है, इसलिए अपने ही अंदर वो आनंद को अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो राधा तत्व है, ये समझना बहुत बहुत मुश्किल है। कृष्ण को समझना भी मुश्किल है, ब्रह्मा जैसे जो परम देवता है, परम देवता क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे प्रथम देवता है वो, उनको भगवान ने हृदय में पूरा ज्ञान दिया है। जब उनको भगवान ने निर्माण किया अपने नाभि के कमल के अंदर, तो पूर्णतः अंधकार में थे, भ्रमित थे, यहां वहां खोज रहे थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कुछ पता नहीं था उनको। फिर भगवान ने तपहा ऐसे कह के, चतुश्लोकी भागवत सुना के उनको पूरा ज्ञान दे दिया। तब जाके ब्रह्मा जी को पता चला कि हमको क्या करना है, निर्माण करना है भगवान के लिए। वो ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम जीव है और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि ब्रह्मा जी के पास है, उतनी बुद्धि हमारे में से किसी के पास नहीं है, किसी देवता के पास भी नहीं है, क्योंकि तो सबसे प्रथम जीव है वो। अपने इतने श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा जब भगवान को जानने का वो प्रयास करते हैं, वो जानते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी अनुभूति क्या है, बहुत समझने लायक है, सुनने लायक है। उनका अनुभव क्या है, वो कहते हैं कि जितना मैं आपको समझने का प्रयास करता हूं, उतना मेरे समझ में आता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। समझ में आया कुछ आपको? द मोर यू नो कृष्णा, द मोर यू कम टू नो कि यू डोंट नो कृष्णा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत जो है ना, ये ऐसा ही है। अरे ब्रह्मा जी की बात तो छोड़ो, स्वयं कृष्ण को पता नहीं है कि वो कितने महान है, उनका सौंदर्य कितना महान है ये भी उनको पता नहीं है। कैसे? जब वो कोई गेंद खेलते हैं और गेंद खेलने के बाद में गेंद जमुना जी में गिर जाती है और भगवान कृष्ण का टर्न आता है कि अभी तुम्हें गेंद लानी है, तो वो गेंद लाने के लिए जब जमुना जी में जाते हैं तो झुकते हैं ना जमुना जी में, जब झुकते हैं तो जमुना जी के जल में वो अपनी प्रतिमा को देखते हैं, और अपनी प्रतिमा को देखकर ये सुंदर व्यक्ति कौन है, इस अचरज में बेहोश होकर जमुना जी में गिर जाते हैं। द्वारका में जब चलते हैं अपने राज दरबार में, तो वो जो स्तंभ है पिलर्स, उसके अंदर जो रत्न लगे हुए हैं, उसके अंदर प्रतिबिंब को देख सकते हैं हम। और भगवान जब चल रहे हैं अपने सभा की ओर, तो अचानक खंबे की ओर देखते हैं और अपनी प्रतिमा को देखते हैं, तो उस सुंदरता को देखकर स्वयं बेहोश हो जाते हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि उनके अंदर कितना ऐश्वर्य है, कितनी सुंदरता है, कितना उनका वेल्थ है, कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी शक्ति है, कितना वैराग्य है, कितनी कीर्ति उनकी है, ये स्वयं को पता नहीं है। इसका कैसा समझ सकते हैं हम? समझो हम किसी भी धनी आते आदमी को पूछते हैं कि आपके पास कितना धन है, तो वो झट से आपको बोल नहीं पाएगा, उसको पता है करोड़ों में है, अब खरबों में, अरबों में होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली पूछेंगे उसको कि आपके पास कितना धन है, तो उसको बोले, वो बोलेगा 15 दिन के बाद आओ, मैं सब गिन के बताता हूँ आपको। क्योंकि अभी आप मुझे पूछेंगे आपके पास कितना धन है, तो मुझे भी टाइम लगेगा सब देखने के लिए कितना है, थोड़ा सा है लेकिन पता नहीं मुझे कितना है एक्चुअली। आप सोच लीजिए मन में, अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास कितना धन है, आप मुझे 5 मिनट में बोल सकते हो? कोई भी नहीं बोल सकता। वैसे ही हमारे भगवान की स्थिति है, उनके पास तो अनंत धन है। हा? एक बार उनकी भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण है वो गौलोक वृंदावन में रहते हैं, उनके विस्तार है बहुत, विष्णु रूप है उनके, कई अनंत विष्णु रूप है जो 4 भुजा वाले हैं और वैकुंठ में निवास करते हैं, एक एक वैकुंठ का नियंत्रण करते हैं। ऐसे एक विष्णु ने एक बार लक्ष्मी जी के साथ में प्रेम प्रेम में झगड़ा किया, झगड़ा नहीं किया उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे ही प्रेम प्रेम में होता है ना पति पत्नी के बीच में, तो प्रेम प्रेम के अंदर जो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा क्रोध आया और एक उनका कंगन टूट गया, तो कंगन टूटा हुआ उन्होंने बहुत गुस्से से ऐसा फेंक दिया उसको, जब उसको फेंक दिया तो उसके ऊपर पूरे दुनिया का इकोनॉमिक्स चल रहे हैं। आपको समझ आया क्या? आपको इंडिया का इकोनॉमिक्स कितना है पता है? कई हजारों करोड़ होता है वो, कई लाख करोड़ भी हो सकता है, अमेरिका का भी है, पूरे दुनिया का है, ये तो खाली पृथ्वी का है, फिर 14 भुवन है, इंद्र का बेल्ट है और स्वर्ग लोक है, भूवर लोक है, बहुत सारे लोक है, वो एक ब्रह्मांड हो गया 14 भुवन का। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, जैसे कहा गया है कि एक बोरी के अंदर अगर आप सरसों के दाने भरेंगे, एक बोरी 100 किलो, और मैं इस कैंप में आए हुए सब लोगों को बोलूंगा कि इस बोरी में जितने सरसों के दाने उसको गिनो, तो पता नहीं पूरा कैंप खत्म हो जाएगा, फिर गिनती नहीं होगी आपकी है ना। ऐसे भगवान का निर्माण है, जितने सरसों के दाने एक बोरी में हो सकते हैं उसको गिन नहीं सकते, इतने अनगिनत भगवान के निर्माण किए हुए लोक हैं, और वह सारे लोगों का जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्थिक स्थिति है उसकी, वो उस टूटे हुए कंगन से बनी हुई है, उस पर चल रहा है सब कुछ। और ऐसे लक्ष्मी जी बहुत सारे कंगन पहनती हैं, दाहिने हाथ में पहनती है, बाएं हाथ में भी पहनती है, गले में भी पहनती है बहुत सारे अलंकार, हाँ सर पे भी पहनती है, उंगली में पहनती है अंगूठियां, पैर में पायल पहनती है, कमर में कमर पट्टा पहनती है, अनंत धन है। और ऐसा लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, ऐसे अनंत लक्ष्मियां जो है वो भगवान की सेवा करती रहती है, और वो केवल विष्णु की लक्ष्मियां हैं, भगवान के सखियां तो अलग है। तो सोच सकते हैं भगवान के पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी कीर्ति है उनकी, कितना प्रभाव है उनके ऊपर। इसलिए सारे विश्व के जितने भी जीव हैं उनके अंश तो है ही, वो उनकी याचना करते रहते हैं, उनकी अपेक्षा करते रहते हैं, और उन्हीं में समा जाना ही उनका मतलब, उनके ही इच्छा से एक रूप होना, ये उनके जीवन की परिपूर्णता है। जीव के लिए जो सच्चिदानंद है, वो जो परम सच्चिदानंद है, उनसे सेवा में एकत्र होना, सेवा में एक रूप होना, वैसे एक रूप नहीं होना, सेवा में एक रूप होना, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा से मिला देना, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करना, ये हर जीव का जीवन का उद्देश्य है। जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, हमको कोशिश करनी पड़ती है बद्ध अवस्था में बाहर निकल के भगवान की सेवा करने का, और सब लोग उन परम भगवान की चरणों की धूल की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो परम भगवान जो है अपने आनंद के लिए 2 भाग में रूपांतरित होते हैं, विभाजित होते हैं, उनका नाम है राधा और कृष्ण, और राधा से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, राधा उनको प्रेम में अनुभव देती है, वो राधा भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले बद्ध जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक हम शरीर से आसक्त हैं, शरीर में हमारा मन लगा हुआ है, शरीर के भोगों के प्रति आपका हमारा सबका आकर्षण है, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी हमारे, तब तक हमको लगेगा क्या है सब कुछ, क्या है सब, वैसे ही है इधर बॉम्बे में, ऐसा भी हरियाली है, इधर बिल्डिंग है, इधर गाड़ी चल रही है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन जैसे जीव भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसके आत्मा के ऊपर चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्मापणम, धीरे धीरे जो आवरण है आत्मा के ऊपर माया के, वो सब निकल जाते हैं। जैसे हम कोयले के ऊपर जब हम रखते हैं कोयला, तो बहुत राख जमा हो जाती है और खाली राख ही दिखाई पड़ती है, जब उसको हवा देते हैं और राख को उड़ा देते हैं, तो क्या होता है, उसकी अग्नि ऊपर आ जाती है और शायद ज्वाला भी दिखाई पड़ेगी आपको कुछ देर के बाद। तो जब तक राख है तब तक वो ज्वाला दिखाई नहीं पड़ती है, जब राख को हटा देंगे, हवा देंगे, तो वो जो अंदर सुप्त राग आग है वो ज्वाला के रूप में प्रकट हो जाती है। वैसे जब तक हमारे ऊपर वो सब काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ के आवरण है तब तक हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको हम जान नहीं सकते, वो कवर्ड है अभी। जैसे आप घमेले में देखेंगे तो आपको खाली सफेद राख देखेगी, उसके ऊपर कुछ देखेगा नहीं, लेकिन हवा देंगे तो पता लगेगा इसमें अग्नि है, इसमें कोयला है। वैसे ही हम आपको देखेंगे, आप हमको देखेंगे, लगेंगे ये जीव है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बद्ध है, भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन है? आनंद को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमको आकर्षित क्या करता है? सौंदर्य आकर्षित करता है, धन आकर्षित करता है, हाँ बल आकर्षित करता है। कोई बहुत बलवान है तो हमको आकर्षित करता है, कोई बहुत विद्यावान है तो हमको उसकी विद्या को देखने में कुरूप है लेकिन बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है तो वो भी हमको आकर्षित करता है। अगर कोई बहुत वैरागी है, केवल एक गाजर खा के रहता है, केवल दूध पी के, केवल फलाहार करके रहता है तो हमको बहुत वी गेट इम्प्रेस्ड। चार मील तक नंगे पैर ठंड में वो आता है और मंगल आरती में जाता है तो हमको बहुत वाह, हम नहीं कर सकते उसको। मतलब त्याग भी जिसके अंदर होता है वो भी बहुत आकर्षक होता है। और ये सब क्या है? ये सब भगवान के ऐश्वर्य है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये सब भगवान के ऐश्वर्य है। हम भगवान को छोड़कर उनके ऐश्वर्यों को देखकर आसक्त हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब हम समझेंगे कि जिसके लिए हमको आकर्षण है वो सब एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी है और वो है कृष्ण, जब हम उसको समझेंगे तो हमारा फिर जो मूल स्वभाव है, प्रकृति हमारी है, वो जागृत हो जाती है। और उसके प्रोसेस ये है उसके लिए कि भगवान के नाम का जप करें। ऐसा नहीं कि सब बात आपको पता नहीं है, हाँ बहुत लोगों को पता है, लेकिन यहां बैठकर दोबारा दोबारा बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि पता होने पर भी हम भूल जाते हैं, ये हमारा स्वभाव है। शरीर हमको उसको भुलाने में मजबूर कर देता है, ये शरीर ऐसी वस्तु है जो हमको भगवान से अलग कर देती है, और ये शरीर ऐसा है जो भगवान से हमको जोड़ भी सकता है। हमारी मति अगर उन पर है तो ये शरीर का यंत्र ऐसा बनाया गया है कि इससे हम भगवान से दोबारा मिल सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के शरीर से, पंछी के शरीर से हम भगवान को नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर में, चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, बालक का हो या बूढ़े आदमी का हो, इस मनुष्य शरीर में वो शक्ति है कि आप इसमें से भगवान को मिल सकते हैं, इसके सहायता से। इसलिए आप लोगों को यहां लाने का प्रयास क्या कारण है? क्योंकि ये तब धाम है, इसे वृंदावन धाम का हिस्सा है, और यहां पर आने से जैसे लोहा लोह चुंबक के पास रखेंगे तुरंत अपनी दिशा को बदली करेगा ना वो। अभी आम ऐसा पड़ा हुआ है, लोह चुंबक सामने आएगा तुरंत उसकी दिशा बदली हो जाएगी, मतलब उसका जो मूल स्वरूप है वो जागृत हो जाएगा। जैसे ही लोह चुंबक के सानिध्य में लोहा आएगा तो अपनी तुरंत उसकी ओर अपनी दिशा को बदली करेगा वो, क्योंकि उसका मूल आकर्षण जो है वो लोह चुंबक की तरह है, लोह चुंबक की ओर है। लोह चुंबक लोहे के लिए मूल आकर्षण है, जब लोह चुंबक से वो दूर चला जाता है तो कहीं भी उसकी दिशा रहती है, लेकिन जब लोह चुंबक उसके पास में आता है वो तुरंत उसकी दिशा बदल जाती है। उसी तरह से हम उस लोहे की तरह है और भगवान लोह चुंबक है। अभी भगवान से दूर है हम लोग, इसलिए यहां वहां डोल रहे हैं, यहां वहां भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों सुख नहीं मिलता है। हाँ, किसी बूढ़े आदमी को पूछिए आप मरते समय क्या आप खुश हो, पता नहीं, जीवन भर कोशिश किया कुछ नहीं मिला, ना बच्चे देख रहे हैं ना परिवार के लिए इतना मेहनत किया, पता नहीं इससे आनंद मिलेगा इसलिए वो किया, उससे भी आनंद मिलेगा ये सोच के वो किया, अनेक प्रकार के कार्य किए आनंद मिलने के लिए, लेकिन आनंद तो मिला ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी दिशा जो है ना वो गलत है। जीव का सही आनंद जो है, जो जीव को चाहिए, जिसके लिए जीव तड़प रहा है, वो भगवान के सेवा में है। और बिना भगवान को जुड़े हुए जीव संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है और वो मजे से रह सकता नहीं है। इस बात को हम सबको विश्वास होना चाहिए। अगर हमको लगता है नहीं नहीं तो भगवान का नाम में आनंद है लेकिन जिलेबी खाने में भी आनंद है, हाँ थोड़ा पैसा कमाने में भी आनंद है, ऐसा आपको लगेगा, सुंदर बनने में, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनने में भी आनंद है, ऐसा आपको लगेगा, जब तक आपको ऐसा लगता रहेगा तब तक आप सही आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे हृदय में 100% सही हमको विश्वास होना चाहिए कि बिना भगवान के सहारे हमको आनंद नहीं मिल सकता है। जब ये यकीन होगा हमारे जीवन में तब हमारे जीवन में आनंद की शुरुआत होगी, और वो आनंद अनंत है जो भगवान के चरणों में उपलब्ध है। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जो सूरज के सामने खड़ा है लेकिन पीट करके खड़ा है, तो उसके सामने उसको अंधेरा ही मिलेगा छाया के रूप में। हम सब लोग भगवान के पास हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनसे हम क्या कहते हैं उसको विमुख हैं, मतलब उनको पीछे रखा हमने पीठ की ओर, उसके सामने नहीं खड़े हैं। भगवान हृदय में, हम भी हृदय में बैठे हैं आत्मा के रूप में, लेकिन हमारी दिशा जो है दिशा वो भगवान की विरुद्ध दिशा में है, उस दिशा में हम देख रहे हैं। प्यासा आदमी अगर समुद्र किनारे खड़ा है लेकिन उसका ध्यान किनारे की ओर है, मतलब उस तरफ है, समुद्र की ओर नहीं है, तो लगेगा क्या कहीं पानी नहीं है, प्यास लग रही है, कहां पानी है। अगर वो मुड़ जाएगा तो पीछे गया तो पीछे तो सागर समान पानी है। हमारी कुछ कुछ अवस्था ऐसे ही है, परमात्मा के पास हृदय में रहते हुए भी हम तो दुखी क्यों हैं? क्योंकि उससे हम विमुख हैं। तो ये जो अंतरंगा शक्ति है ये हमें भगवान से जोड़ने में सहायता करती है, ये उसका कार्य है। और जो बहिरंगा शक्ति है वो पुलिस की तरह है, वो भगवान के पास किसी को जाने देते नहीं है। जब तक हम दोषी हैं, जब तक हमारे अंदर दोष है, त्रुटियां हैं, आवरण है, भौतिक दुनिया की आसक्ति है, तब तक बहिरंगा शक्ति हमको रोक के रखती है फिल्टर की तरह। जब तक साफ नहीं होते हम, स्वच्छ नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, तब तक वो छोड़ती नहीं आगे, इसलिए वो फिल्टर की तरह है। जब फिल्टर से जाने के योग्य हो जाएंगे तो फिल्टर से निकल जाएंगे, नहीं तो वो कचरा जो है वहां पर रुक जाएगा। जो फिल्टर से बड़े साइज के हैं वो जाली में रुक जाएंगे, जो छोटे साइज के हैं योग्य हैं वो चले जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको कुछ? वो बहिरंगा शक्ति का कार्य है, और अंतरंगा शक्ति जो है हमेशा हमको सहायता करती रहती है भगवान को जुड़ने के लिए। हालांकि जितना भी हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण है, छोटा मोटा है, अभी हम लोग बद्धावस्था में, जितना भी अनुरूप आकर्षण है वो सारा आकर्षण राधा रानी अंतरंगा शक्ति के रूप में तरफ से हमारे तरफ आता है। इसलिए हमारे अंदर जो भी अभी लग रहा है भगवान के लिए आकर्षण लग रहा है वो सब राधा रानी की कृपा है। और जहां पर सब दुनिया में, सब विश्व में, सब ब्रह्मांडों में, सब लोकों में सब जीव भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए, और वही भगवान अपने आनंद के लिए राधा रानी के पास में आते हैं। ये ब्रज भी ऐसा है कि ब्रज में भी अनेक हिस्से हैं, कई वन है, कई प्रकार के यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन ये जगह जहां पर आप बैठे हैं, बाकी जगह पर, सब जगह पर सारे देवता लोग भी, सारे संत लोग भी आते हैं और भगवान के चरणों की धूल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कि सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहते हैं इसको फेवर, अनुकूलता उनकी ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन वो स्वयं भगवान जो है अपने स्वयं के लिए अनुकूलता प्राप्त करने के लिए राधा रानी के पास में आते हैं। सब ब्रज के अंदर, सब ब्रह्मांडों के अंदर सब लोग लोटपोट होते हैं रज में भगवान के चरणों की, और स्वयं भगवान यहां पर आकर राधा रानी के चरणों में लोटपोट होते हैं, उनके चरणों की धूल चाहते हैं। तो राधा रानी का स्थान वैसा है, उसको कृष्ण स्वामिनी कहते हैं। सब विश्व के नाथ कृष्ण हैं, लेकिन उनकी भी कोई स्वामिनी है, वो है राधा रानी। इसलिए हम लोग यहां पर आते हैं, और जब यहां पर आते हैं तो यहां के दिव्य वातावरण से हमारी आत्मा जैसे लोह चुंबक के पास लोहा मुड़ जाता है, वैसे हमारा आत्मा भी तुरंत उसके अनुकूल हो जाता है। इसलिए यहां आने पर एकदम भक्ति का विकास होता है। तो छोटी हम थोड़ी बड़ी भक्ति कर रहे हैं मुंबई में, वो धक्का लगाना पड़ता है, कोई भक्त को आके बहुत समझाना पड़ता है, प्रभु जी ऐसे करो वैसे करो, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है, सॉरी हम शरीर नहीं है आत्मा है और भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए, प्रभु जी मांस मत खाइए, प्रभु जी शराब मत पीजिए, हाँ बहुत सारा बताना पड़ता है, तभी भी धीरे धीरे हल्का हल्का हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं प्रभु जी पिक्चर जाना है, अरे सत्संग में आ जाओ, अरे पिक्चर जाना है, अरे टीवी पे सीरियल चल रहा है, मैच चल रही है, ऐसे बहुत धक्का मारना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया है। ऐसे लोग जैसे ही वृंदावन धाम में आते हैं तो एकदम भक्ति का विकास हो जाता है उनका। अरे आप लोग पूछेंगे मैं नहीं तारीख क्या है आज, हम कथा में बताएंगे आपको रोज 31, 1, 2, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा बार कौन सा है, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। हाँ केवल दिन रात मालूम पड़ेगा कि दिन है कि रात है, क्योंकि दिखाई पड़ता है न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आ रही है कोई पता नहीं, अमर उजाला में क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है कोई पूछता नहीं, बॉम्बे में हमको सुबह उठते न्यूज़पेपर चाहिए, पहला चीज आते ही न्यूज़पेपर पे देखना हेडलाइंस में क्या है, शरद पवार क्या बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह क्या बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने कितना बनाया, रोज हमको मालूम होना चाहिए। और यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब धाम का महिमा है। धाम के संपर्क में आने से जो हम मूल है ओरिजिनली हम कौन है वो भाव जागृत होता है हा? और शहर में जाने से जो हम नहीं है वो जागृत हो जाता है जो हमें नहीं होना चाहिए, जो हम नहीं है वो अपने आप को समझते हैं कि हम है। कोई सोचता है मैं औरत हूँ, कोई सोचता है मैं आदमी हूँ, कोई सोचता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कोई बोलता है मैं अनपढ़ हूँ, कोई बोलता है बहुत सुंदर हूँ, कोई बोलता है इतना सुंदर नहीं हूँ ये सब शरीर की पहचान है हा? ना हम सुंदर है ना हम गुरु है, हम एक्चुअली परम सुंदर है आत्मा के स्तर पर। सौंदर्य जो है वो आत्मा का ही है, जो भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है ना अभी थोड़ा बहुत सेंट वेंट मार के थोड़ा सा मेकअप करने के बाद, वो भी आत्मा का सौंदर्य है, क्योंकि आत्मा जब निकल जाएगी सारा सौंदर्य जो है वो जमीन पर आड़ा हो जाएगा और अर्थी उठाने के योग्य हो जाएगा शमशान घाट के लिए। तो जो शरीर का जो स्थिति है वो हमारी मूल स्थिति नहीं है। शरीर के अंदर होने पर भी हम इतना जीवित और इतना सजीव और इतना उत्साह से दिखते हैं, अगर शरीर का बंधन छूट जाएगा तो आत्मा के अंदर कितनी शक्ति होगी। वो शक्ति जो है आत्मा की मूल शक्ति जो है धाम में आने पर जागृत हो जाती है। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि बरसाना धाम का जो हमारा कैंप है ये हमारे लिए बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है। बाहर से तो हम लोग कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, किसके दांत उखाड़े जा रहे हैं, किसके दांत ठीक किए जा रहे हैं, किसके दांत साफ किए जा रहे हैं, जो अच्छे हैं वो साफ किए जा रहे हैं, जो बुरे हैं उसको निकाला जा रहा है, आंख के अंदर जो मोतिया है उसको निकाल के दृष्टि प्राप्त हो रही है, भोजन किया जा रहा है सबको, कीर्तन हो रहा है। ये हमारी सेवा है भगवान को, भगवान के साथ जुड़ने के लिए, राधा रानी और भगवान के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अंदर से अंतरंग दृष्टि से देखा जाए, इंटरनल कारण क्या है उसका, कि हम सब लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही अधिक मात्रा में भगवान के पास जाना चाहते हैं। हाँ, समय निकालकर हम लोग यहाँ पर आए, ये चाहते हैं कि थोड़े समय में बहुत ज्यादा भगवान की तारीफ, भगवान के करीब हम जा सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, ताकि हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में अपना प्रभाव दिखा सके। और यही सच्चाई है, प्लीज आप समझने का प्रयास करो। आप लोग कुछ विद्यार्थी बन के आए हो, कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई अलग अलग रूप में यहाँ पर आए हैं, ये सब हमारा एक्सटर्नल पहचान है। जैसे टोपी पहनते ना हम लोग, काली नीली और हरी और पीली, वो टोपी हमारी पहचान नहीं है, वो तो टेम्पररी है। जब हम 80 साल के हो जाएंगे तो हमको मेडिकल का एक दवा भी याद नहीं आएगा हमारे मैडम ने यहाँ पर बहुत सारे डिग्री किया है, MD और उसके आगे भी किया है, जब 80 साल के हो जाएंगे तो कुछ भी उनको एक्सरे में कुछ याद नहीं आएगा। क्यों? ये सब टेम्पररी है, केवल जीविका का साधन है सब ये। लेकिन मूल बिजनेस क्या है हमारा? भगवान के साथ जुड़ना। और वो जोड़ने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सुन, हम ट्रेन से बैठकर मथुरा में के लिए निकले थे हम लोग, और अरे सूरत में बहुत बड़ा बड़ा अच्छा आया तो उतर गए खेल लेने के लिए, और खाने में इतने मग्न हो गए कि ट्रेन छूट गई। तो मतलब जिस उद्देश्य से बैठे थे उसको भूलकर कुछ अलग ही काम करने लगे। वैसे हम लोगों को मनुष्य जीवन क्यों दिया गया है? ये ऐसी ट्रेन है जो हमको भगवान तक पहुंचाएगी, लेकिन उस ट्रेन में बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रियों का भोग कर रहे हैं। तो वो सब जो भूल भुलैया है, जो भ्रम है, जो चक्र से हम लोग फंसे हुए हैं, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा जो भ्रम है कि हमको अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, और मैं ये होना चाहता हूँ, है ना, सोचते ना हम लोग, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे सुंदर बनना है, मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए, मुझे राज्य का मंत्री बनना है, ये कोशिश करनी है, धन कमाना है, ऐसे हम सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, यहीं पर रहने वाले समझते हैं, यही हमारा जो निवास है ये समझते हैं, इसलिए हम लोग को मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन हैं, तो हमारा पूरा कार्य जो है बदल जाता है, कंप्लीट चेंज। क्योंकि अपनी पहचान करना इस जीवन में बहुत जरूरी है, और वो अपनी पहचान करने के लिए भी राधा रानी सहायता करती है, उन्हीं की कृपा से हमको ये पता चलता है कि हम कौन है, ये पहली स्टेप है। उसके बाद में उन्हीं की कृपा से हमको ठाकुर जी की सेवा मिलती है, इसलिए हम सबको यहाँ पर अनंत धन्यवाद राधा रानी को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ तक लाया। हाँ, ट्रेन में कोई बीमार नहीं पड़ा, घर में कोई बीमार नहीं पड़े, हम लोग ट्रेन में बैठे अच्छी तरह यहाँ पहुंच गए, अभी भी बीमार नहीं पड़े हैं, प्रसाद मिल रहा है, रहने की व्यवस्था हो रही है, सेवा मिल रही है, जिससे हम सब लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ विद्यार्थी है, नर्सिंग स्टूडेंट, वो कम्युनिटी पोस्ट के बहाने यहां पर आए हैं। हमने भी कम्युनिटी पोस्टिंग उसका ऐसा सेटिंग किया है कि वो काशीमीरा और जव्वार और मुखाड़ा ऐसे ही करने के बदले में बरसाने में क्यों ना किया जाए ऐसे हमने व्यवस्था किया है। क्यों करते हैं ऐसा? हम इनको सब लोग जव्वार में भेज सकते हैं, थाना डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो जाएगा उनका कम्युनिटी पोस्टिंग, टीचर भी चली जाएगी, वो टीचर यहां पर लेके आए हूं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी पोस्टिंग तो बहाना है, राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना है, इसलिए यहां पर लेके आते हैं। इसलिए आप लोग इस मौके को, अवसर को मत गवाना, सब लोग जुड़ जाना। अगर यहां पर आके नहीं जुड़े तो और कहां जुड़ेंगे? इससे और पावरफुल स्थान दुनिया में कोई नहीं है। स्वयं भगवान जहां पर अपने लिए प्रेरणा लेने के लिए आते हैं, उससे अधिक प्रेरणादायी जगह और कौन सी हो सकती है? जस्ट इमेजिन, कोई है क्या ऐसा? भगवान के पास भी नहीं है इसके ज्यादा पावरफुल चीज भगवान स्वयं यहां पर आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं और खुद के लिए प्रेरणा लेते हैं। सारा जो भगवान के लिए अनुकूल है, जो भगवान को आनंद देने वाला है, दे सकता है, वो हर वस्तु यहां पर निर्माण होती है राधा रानी के चरणों से, और यहीं से उसका विकास होता है। और पहले सब वो रस जो है वो सब ब्रज में पहुंचता है और वहां के आगे फिर अलग लोगों में पहुंचता है, लेकिन उसका जो विकास, उसका जो उगम है वो राधा रानी के चरणों से है। जो राधा रानी चलती है ना, तो उनके पायल जो है घुंघरू, जो घुंघरू की जो आवाज आती है ना, ध्वनि निकलता है, उसमें से वेद निकलते हैं। इस विश्व में जितनी भी चीजें ज्ञान के रूप में उपस्थित है ना, उपलब्ध है, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल एज नॉलेज, उसको संस्कृत में वेद कहते हैं। वेद का मतलब ज्ञान। तो जो वेद वाणी जो है, उसको जो ध्वनि है, वो ध्वनि रूप होता है, हाँ, वो शब्द में प्रकट होता है, उसके बाद में फिर लिखित प्रकट होता है, जो हम सुनते हैं फिर उसको हम लिखते हैं याद रखने के लिए। तो ये लिखने का जो मामला है ना, ये सब कलयुग वाला मामला है। सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में लिखने वाला मामला है ही नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं है। सब कुछ कान से सुनते हैं और दिमाग में स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में उसके बाद में कलयुग के बाद जब स्मृति नष्ट हो जाती है, तब वेद व्यास जी उसको लिखते हैं और उसको लिखकर हमारे लिए किताब के रूप में देते हैं। ये किताब का मतलब क्या होता है, क्यों लिखते हैं? इसके अंदर जो हम याद नहीं कर सकते हैं उसको हम लिखते हैं ताकि याद रहें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्या आप लोग श्रुतिधर हो गया? उसका मतलब क्या है? श्रुतिधर का मतलब है जो सुनने से केवल सब कुछ याद रहता है, उसको कहते हैं श्रुतिधर। और कलयुग में ऐसे कोई विरला व्यक्ति है जिनको सुनने से याद रहता है, क्योंकि सुनते सुनते हमारा मन यहां जाता है, वहां जाता है, प्रसाद में क्या है, स्वीट क्या बनने वाला है, और सुबह क्या है, और घर में क्या हो रहा है, बॉम्बे में कितनी याद आती है हमको, तो कैसे एकाग्र होंगे, कैसे हमको याद रहेगा सब कुछ? नॉट पॉसिबल। इसलिए वेदव्यास ने उसको लिखा सब कुछ, सारा जो कुछ हमको समझने योग्य है, समझना चाहिए, वो सबको लिख दिया उन्होंने बहुत मेहनत से, हिमालय में बैठकर, गुफा में, संन्यास्त वृत्ति में बैठकर लिखा उसको, ताकि हम सबको वो पढ़ने के लिए मिले। तो वो जो ज्ञान है वेद का, वो राधा रानी के चलने से, घुंघरू के ध्वनि से निर्माण होता है। इतनी शक्ति उनके पास, वालादिनी शक्ति है। जो भी आनंद प्राप्त करने का इच्छा हमारे अंदर है, शक्ति हमारे अंदर है, वो सब उनकी तरफ से आती है। जहां तक कृष्ण भगवान को भी आनंद जो प्राप्त होता है वो उनकी ओर से होता है, साक्षात अलादिनी, आह्लाद देने वाली शक्ति है वो, चिरंतनता देने वाली शक्ति है हम सबको। अगर हम सब लोग अमर हैं तो वो अमरता जो है, जो इटर्नैलिटी है, वो भी उनकी ओर से आती है। और जो हमको आनंद चाहिए, जिसके लिए हम खोज रहे हैं यहां पर, गलत दिशा में या सही दिशा में जो भी हो, उसका अनुभव भी उनकी ओर से आता है। आनंद की जो प्रवृत्ति है उसका उगम वो है, वो स्वयं आनंद मूर्ति है। इसलिए जब हम उनसे जुड़ जाएंगे तो ही हमें आनंद का अनुभव होगा। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको अगर सही आनंद को अनुभव करना है तो वो आनंद यहां मिलेगा आपको। भले रहने की सुविधा अच्छी नहीं होगी, शायद गर्म पानी थोड़ा गुनगुना मिलेगा सुबह, वी डोंट नो, लाइट अचानक चली जाएगी, साबुन लगा दिया है और लाइट गुल हो जाएगी, ऐसे अनेक लीलाएं यहां पर होंगी, अनेक असुविधा भी होंगी शरीर के सर पर, लेकिन आत्मा पे सर पर यहां पर फुल चार्ज अवेलेबल है। यहां पर आत्मा डिस्चार्ज नहीं होती कभी, मोबाइल डिस्चार्ज होगा, शरीर डिस्चार्ज होगा, परेशान हो जाएंगे आप, हो सकता है सब कुछ, लेकिन इस जगह पर आत्मा डिस्चार्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर फुल राधा रानी का चार्ज अवेलेबल है। वहां स्वामिनी बैठी है पहाड़ पर, उनका घर है वो, और चिरंतन निवास करती है वो, और सभी जीवों को चिरंतन बुला बुलाने वाला मतलब आकर्षण करने वाला आनंद देती है वो। तो हम सबको समझना यह है कि हमको सबको उनकी शरण लेनी है। जब उनकी शरण लेंगे सेवा के माध्यम से, जो सेवा आपको ऑलरेडी प्राप्त है वो भी आप दिल से करेंगे। हाँ, कुछ लोग जप कर रहे हैं शायद कथा के समय, वो जप नहीं करना, कथा के बाद में करना। तो वो जो आनंद हमको चाहिए वो आप, उसका साधन आपको ऑलरेडी मिल गया है, उसको आप हृदय से कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर, राधा रानी का स्वभाव ऐसा है कि कौन बड़ी सेवा कर रहा है और कौन छोटी सेवा कर रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटी बड़ी सेवा उनके लिए तुच्छ ही है। उनके सामने बड़ी से बड़ी सेवा भी हम लोग करेंगे, रत्नों का महल बना देंगे समझो उनके लिए, तो भी तुच्छ है। मैंने कहा ना आपको कि पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स एक लक्ष्मी के टूटे हुए कंगन पे चल रहा है, तो उनको हम क्या इम्प्रेस करेंगे रत्नों का महल बना के। इसलिए बाहरी वस्तु से उनको हम लोग इम्प्रेस नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। तो कैसे उनको आकर्षित कर सकते हम लोग? भाव से, वो भाव को ग्रहण करते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति ने आपको आके हैप्पी बर्थडे कहा और एक चॉकलेट दिया, दूसरा ने आया और चॉकलेट दिया, और आपकी बेटी ने आया और चॉकलेट दिया, हैप्पी बर्थडे कहा, चॉकलेट तो वही है लेकिन तीनों व्यक्ति का भाव अलग अलग है। एक व्यक्ति को गले लगाएगा, किसी को चुम्मा लेगा, एक दूसरे से सेकंड करेगा और चले जाएगा। दिया सबने एक ही वस्तु है, फिर भी भाव का अनुभव जो है अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग चॉकलेट स्वीकार नहीं करते हैं, वो भी करते हैं लेकिन चॉकलेट के माध्यम से जो भाव है प्रेम का उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमको मम्मी ने अगर परदेश में फोन करके बोला हैप्पी बर्थडे बेटा तो बहुत आपको आनंद आएगा, और ऑफिस के 10 लोगों ने आके हैप्पी बर्थडे बोला तो आपको ठीक लगेगा। आपका क्या अनुभव है? हाँ, सबका अनुभव यही है, सबको प्रेम चाहिए और सब लोग उस प्रेम को ढूंढ रहे हैं। चाहे आप 1,000 रुपए का गिफ्ट दो या 5 पैसे का गिफ्ट दो, सब लोग प्रेम को देख रहे हैं, वो प्रेम मिल रहा है कि नहीं। इसलिए होटल का हम लोग 56 भोग वाला खाना भी खाएंगे फिर भी घर की दाल रोटी हमको मीठी लगती है, क्योंकि घर की दाल रोटी बहुत प्रेम से बनती है। वो प्रेम जो है उसको भगवान देख रहे हैं, उसको राजा रानी देख रही है। इसलिए अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है, बहुत कुशल काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई छिलका निकाल रहा है, ये कोई उच्च और निच सेवा का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। वो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सेवा है, ये तो बहुत बड़ी सेवा है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहां पर ऐसा है, लौकिक दृष्टि से ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट कीर्तन है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रसाद सेवा है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रसाद वितरण की सेवा है, उतना ही इंपॉर्टेंट झाड़ू लगाने की सेवा है, और उतना ही इंपॉर्टेंट गर्म पानी करके देने की सेवा है। ध्यान रखना इस बात को, है ना इंपॉर्टेंट, ठंड में गर्म पानी का टेम्परेचर जो है ना यहाँ बहुत जल्दी समझता है कि ये बहुत गर्म नहीं है, परेशानी हो रही है। तो ये सेवा में जो हृदय से सेवा करता है उसका हृदय को राधा रानी देखती है, क्योंकि कृष्ण भगवान को ऐसे कहा गया है कि योगी भी ध्यान गम्यम, अनेक योगी अनेक जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे हैं, परिवार को छोड़ रहे हैं, धन को छोड़ रहे हैं, आसक्तियों को छोड़ रहे हैं, इंद्रियों के भोग को छोड़ रहे हैं, और जन्म जन्मांतर तक विरक्त होकर तपस्या कर रहे हैं। उनको भगवान के 20 नाखून है ना, उनके 2 पैरों के कितने हैं, नहीं 2 हाथ और 2 पैर मिलकर 20 नाखून है। एक नाखून के द्वारा अनंत दिव्य किरण निकलते हैं, प्रकाश की आभा निकलती है, जाज्वल्य निकलता है, उसमें से एक किरण का भी दर्शन नहीं होता है उनको इतना तपस्या करने के बाद, क्योंकि भाव नहीं है उसके अंदर। और वही भगवान जिनके चरणों से निकलने वाले अनंत किरणों का एक किरणों का दर्शन भी किसी को नहीं होता है, वो भगवान को गोपियां अपने बालों की लटकन में बांध के रखते हैं और नचाते हैं उनको तालियां बजाकर। क्यों ऐसा होता है? वो तो बड़े ज्ञानी तो है नहीं, तपस्वी नहीं है, योगी नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्रणाम भी नहीं करते वो क्योंकि उनके पास प्रेम है। वो कहते हैं कि वैकुंठ का और गोलोक का आनंद छोड़कर मैं, ऐश्वर्य छोड़कर यहां पर आया हूं। क्यों आया हूं? गोपियों का छाछ चुरा कर खाने के लिए, गोपियों का मक्खन चुरा कर खाने के लिए। वो मक्खन भी उनका है, वो मटका भी उनका है, वो रवि भी मंथन भी करने वाला भी उनका ही है, सब कुछ गाय भी उनकी है, दूध भी उनका है, सब कुछ उनका है, और बनाया हुआ मक्खन वो भी उनका ही है, उन्हीं के द्वारा शक्ति द्वारा दी गई है जो गोपियां उससे बनाती है। लेकिन फिर भी वो अपना घर का खाने के बाद भी वहां जाकर चुराते हैं। मैया सोच रही थी कि ऐसा मेरे मक्खन में क्या कमी है, तो इतना अच्छा बनाती हूँ फिर भी जाकर वहां पर चोरी करता है। क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। और गोपियां भी कंप्लेन करती रहती है बार बार कि हमारे घर में ये करता है, मक्खन नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चों को चिमटा निकालता है और हमारे बच्चों के कान में पानी डाल देता है, कभी कभी पेशाब भी कर लेता है, हाँ कभी कभी बंदरों को खिला देता है और मटके तोड़ देता है। सब कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन मन ही मन के अंदर रोज प्रार्थना करते हैं कि मेरा मक्खन ऐसा मधुर बने कि आज मेरे घर में चुराने के लिए आए। क्यों करते हैं ऐसा? चटपटी लीला क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। वो मक्खन पीला है कि सफेद है कि किस रंग का है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे ही प्रेम से बनाया मक्खन बहुत मिठाई होता है, आकर्षक ही होता है, सुस्वादु होता है। तो यहां पर जो है ना सेवा भाव के अंदर बहुत प्रामाणिकता होनी चाहिए, उन्हीं से वो प्रभावित हो सकते हैं। हम कितना नंबर कर रहे हैं यहां पर अचीव कर रहे हैं, हाँ अभी इस साल 1000 ऑपरेशन करने का प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। अगले साल शायद 1500 हो सकता है, तो बढ़ते जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस साल में 185 केवल हुए थे उस साल में कोई कम सेवा नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान उस समय भी भाव देख रहे थे और आज भी भाव ही देख रहे हैं। याद रखना इस बात को, आगे जाकर शायद हम लोग जब और दुगुनी उम्र के हो जाएंगे तो शायद इसी जगह पर हजारों ऑपरेशन होने लगेंगे भविष्य में, लेकिन उस समय की सेवा में और आज समय की सेवा में अंतर नहीं है, क्योंकि उस समय भगवान भाव देखते थे, आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। इसलिए आप सेवा की जो टाइप है, आपकी सेवा का टाइप जो है और सेवा का जो मात्रा है, कितनी सेवा कर रहे हैं, उससे भगवान प्रभावित होते हैं ऐसा मत सोचना। यहां पर हृदय से सेवा करना, प्रामाणिकता से, शुद्ध मन से, द्वेष रहित, न झगड़ा करते हुए, न विवाद करते हुए, अपने लिए कोई ज्यादा सम्मान की अपेक्षा न करते हुए कि मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको ऐसा क्यों दिया, ये सब कुछ जो है भारी बातें हैं, ये तुच्छ बातें हैं। इन सबको जैसे मुझे क्यों नहीं ये प्राप्त हुआ, ये सुविधा मुझे क्यों नहीं मिली, अरे हम तो जब प्रसाद के लिए आए, इतना मेहनत करके आए तो स्वीट ही नहीं मिला हमको, स्वीट खत्म हो गया था, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन सोचना यह है कि क्या हम यहाँ पर स्वीट खाने आए क्या? नहीं, हम लोग यहाँ राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आए। बाय द वे शरीर को चलाने के लिए दाल रोटी बन रही है वो हमको मिल रही है, बाय द वे रहने के लिए मकान चाहिए वो मिल रहा है, 6-4 लोग रह रहे हैं वो मिल रहा है। ये सब बाहरी वस्तुएं हैं, दिस इज एक्सटर्नल कन्वीनियंस। लेकिन सही उद्देश्य जो है उसको कुछ भी असुविधा होते हुए हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, इतना सब छोड़ के हम लोग क्यों आए हैं, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आए। कई लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करके उनको हाँ ना कुछ रजामंद नहीं हो रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, सैंक्शन नहीं हो रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कष्ट करके लोग यहाँ पहुंचे हैं। वो लोग समझते हैं कि यहाँ तक पहुंचना आसान काम नहीं है, केवल राधा रानी की सैंक्शन होती है ना तो ये लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। तो ऐन मौके पे लोगों को टिकट नहीं कंफर्म होते हैं या कुछ बीमार पड़ जाते हैं, घर में कोई समस्या आ जाती है, बहुत इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोगों को भगवान का और राधा रानी का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए, बार बार, अनंत बार, थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको यहाँ पर आने के लिए परमिशन दिया, आपके घर में आने को दिया। हाँ, अरे हमारे घर में जब कोई आता है ना तो बहुत सारे लोगों को हम लोग गेट से ही विदा कर देते हैं, जैसे कि पोस्टमैन है, कचरे वाला है, धोबी है, दूध वाला है, उनको बाहर से ही विदा कर देते हैं। कुछ लोग अंदर आते हैं, हॉल से उनको विदा कर देते हैं, लेकिन जो विशेष लोग होते हैं ना वही हमारे घर के बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में अंदर आकर बैठ सकते हैं, हमारे बेड पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या होता है उसका मतलब, जो सबसे अधिक प्रेमी है, जिनका घनिष्ठ संबंध है, वो हमारे घर के किसी भी हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी किचन का डब्बा उठा के कुछ खा सकते हैं निकाल कर, अगर बहुत ज्यादा प्रेम है तो। सब लोग नहीं कर सकते ऐसा, जितना रिश्ता अपना गहरा है उतना हम किचन का डब्बा खोलेंगे और क्या इसमें क्या है, मिठाई है क्या, क्या टोस्ट है कि खारी है, क्या बिस्किट है हमको चाहिए, ऐसा खोल के खा सकते हैं, फ्रिज निकाल के खाएंगे, कुछ जूस निकाल के पियेंगे, कौन कर सकता है जिसका रिश्ता बहुत घनिष्ठ है। वैसे ये जो क्षेत्र है, हाँ कितना टाइम हो गया अभी, ये जो क्षेत्र है ये भगवान का जो वृंदावन धाम जो घर है इसका अंतःपुर है, यानी कि बहुत अंदर की जगह है, यहाँ पर बहुत प्रेम की और बहुत प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लीलाएं होती है, यहाँ पर सबको प्रवेश नहीं है। यहाँ पर इंद्र, सुखदेव, व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा, शिव, इनको भी प्रवेश नहीं मिलता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है उनको, बहुत गिड़गिड़ाते हैं वो, क्योंकि वैल्यू जानते हैं इस चीज की। तो वैसे हम तो ब्रह्मा भी नहीं है ना शिव है ना नारद जी, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, हम तो तुच्छ बद्ध जीव हैं। फिर भी हमको राधा रानी ने अपने अंतापुर में, जहां पर उनके अंतरंग प्रेम लीलाएं चलती रहती हैं, प्राइवेट लीलाएं, वहां पर हमको प्रवेश दिया है और सेवा का मौका भी दिया है, इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। दो चीजें बहुत जरूरी है, सेवा भाव और धन्यवाद भाव, कृतज्ञता। ये दो चीजें आपके अंदर अगर ठीक से बैठ गई है इस समय, तो आपको बरसाना धाम का निवास का पूरा लाभ मिलेगा। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की आप अपेक्षा नहीं करेंगे। सेवक जो है उसका धन क्या होता है, उसकी सेवा, कोई प्राइवेट सम्मान, कोई उसको अलग चीज, कोई उसको अलग से व्यवहार सुविधा, ये उसका धन नहीं है। सेवक का धन है सेवा, और सेवा मात्रा में बड़ी मिले उससे भी बढ़कर वो सेवा का भाव जो है वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग यहां पर आए। इस बात को सब लोग एकदम मन में फिट कर दीजिए, तब जाकर आपको बरसाना में राधा रानी की कृपा छुएगी, क्योंकि जो प्रामाणिक और तीव्र सेवा भाव से यहां पर आएगा वही राधा रानी से जुड़ पाएगा। जब तक कनेक्शन नहीं होता है ना, तब तक कुछ चीज की वैल्यू होती नहीं है। हाँ, हमारे पास बड़े बड़े 50,000 के मोबाइल भी निकलते हैं आजकल, खाली वो आप मार्केट से लेके आएंगे तो क्या वैल्यू है उसके अंदर, बहुत सारे फीचर्स है, गेम्स है उसके अंदर, क्या क्या अलार्म क्लॉक है, म्यूजिक है, MP3 प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है उसका, सेवा नहीं मिल रही उसकी, हाँ द सर्विस प्रोवाइडर ने कनेक्शन नहीं किया है तो क्या वैल्यू है उसकी, तो डमी है वो, खाली खेलने की चीज है। लेकिन जब उसका कनेक्शन होता है तो उसका जो सही पर्पज है जिसके लिए मोबाइल बनाया गया है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, हाँ उसका संबंध नहीं हो गया है, तो इस यंत्र का कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर बहुत बुद्धि है, बड़ी दृष्टि है, हम गा सकते हैं, हम कविता लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत सारी कुशलता इसके अंदर है, लेकिन जब तक ये भगवान के साथ जुड़ा नहीं है तब तक ये मुर्दा ही है, यूजलेस। वो आपको गेम दिखा सकता है उसके अंदर, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकता है वो। तो इस यंत्र से, ये भी मोबाइल यंत्र ही है, घूमता है इधर उधर खोज में, आनंद की खोज में यहां वहां ढूंढते रहता है, भागते रहता है, लेकिन जब तक इसका कनेक्शन उनसे नहीं होता है तब तक इसको कोई वैल्यू नहीं है। जीवत शव समान, भगवान के कनेक्शन के बिना हमारा जीवन जो है चलता फिरता दिखाई पड़ता है, लेकिन वो शव के समान है, मुर्दे के समान है। जब कृष्ण भक्ति राधा रानी का प्रेम जुड़ जाता है तो वो जीवन चालू हो जाता है, तब उसमें जान आ जाती है। तो वो जो जीवित सजीव होने का जो तरीका है वो सीखने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। हम सबको सजीव होना है। अभी हम लोग सब शरीर के बंधन में एक मुर्दे की तरह व्यवहार कर रहे हैं इंद्रिय भोग के लिए, जो समाप्त होने वाला है, जो है ही नश्वर और वो समाप्त भी होने वाला है, फिर भी उसके पीछे हम भाग रहे हैं। अभी हमारा ध्यान चिरंतन चीज की ओर जाना चाहिए, जो परमानेंट है और जिसकी हमारे लिए जरूरत है, जिसकी खोज में हम भटक रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमको, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी यह सही चीज हमको मिल गई है, सही जगह पर हम आ गए हैं सही वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, सबको शुभकामना भी देता हूं। राधा रानी की कथा बताने के पहले भूमिका बताना चाहिए, तो हम लोग कैसे मनोरंजन की कथाएं बताते रहेंगे, राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, जन्म कैसे हुआ, फिर कैसे आए, कैसे होली खेले, कैसे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, वो तो अनंत कथाएं हैं। लेकिन उस कथा का मतलब क्या है जब तक आपको भूमिका ही पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं समझने का, और ये जगह वो भूमिका समझने की जगह है कि इस भूमि की जो रज है, जो धूल है, उसकी क्या वैल्यू है, ये हमको समझना चाहिए। इस धूल को मस्तक में लगाने से राधा और कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी यहां पर वो आके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता है। इतनी पावरफुल है ये कि इस भूमि पर भगवान ने चप्पल ही नहीं पहना है, जूता ही नहीं पहना है, भगवान स्वयं यहां नंगे पैर घूमे हैं। इसलिए इस धूल में, इस भूमि में भगवान के चरणों के जो चिन्ह है वो अंकित है, इस भूमि का वो अलंकार है जहां पर स्वयं भगवान बलराम जी, कृष्ण भगवान, राधा रानी, सखियां, सखा, गोपाल, सब लोग यहां पर नंगे पैर डोलते हैं। तो सबके चरण चिन्हों से ये धूल जो है वो पावन हो गई है, उसमें हम लोग आए हैं। एक एक कर्ण मात्र से भी प्राप्त होने से उनकी प्रीति प्राप्त हो सकती है। ऐसे इस रज में शक्ति है, उस रज के होलसेल चीज में आप लोग यहाँ पर आए हुए, इसलिए अपने भाग्य को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आने का जो भाग्य है उसको समझना हमारी बुद्धि के बस में नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं कि हम बड़े भाग्यवान हैं। अनंत जन्मों के पुण्य करने के बाद, मनुष्य होने के बाद में, मनुष्य के अनंत जन्म लेने के बाद में, अनेक पुण्य करने के बाद में, कई संतों की सेवा करने के बाद में, कई संतों का संपर्क हुआ, कोई उसकी वाणी सुनी, कोई सेवा किया उनका अपनी अपनी जगह पर, ऐसा अनंत जन्मों का सब जो स्टॉक इकट्ठा हो गया ना, उसके फल के स्वरूप कोई यहां पहुंच सकता है। वो पूंजी जब लुटाएंगे, उसको ट्रेड करेंगे, तो आपको इस धाम में एंट्री मिल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सब लोगों ने पिछले अनेक जन्मों में अनेक पुण्य कर्म करके ऑलरेडी अपना योग्यता बना के रखा है, इसलिए आप लोग यहां बैठे हुए, नहीं तो यहां नहीं बैठ सकते आप लोग, कोई नहीं बैठ सकता है। एक बात तो सिद्ध हो गई कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये कर चुके हैं आप सब कुछ, इसके फल के स्वरूप आपको यहां पर निवास मिल रहा है। अभी क्या करना है वो बहुत जरूरी है। इतना सब टिकट बड़ा निकाल के आप लोग यहां पर आए हैं, तो उसको यहां पर वेस्ट नहीं करना है, आपको समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां का एक एक क्षण जो है वो इतना कीमती है कि वो जन्म जन्मांतर की जो परम प्राप्ति है वो आपको दिला सकती है। तो एक एक क्षण में इतनी शक्ति यहाँ की, क्योंकि यहाँ का बरसाने का निवास है, वो भी मनुष्य जीवन का बरसाने का निवास है, कुत्ता बिल्ली का भी नहीं है, मनुष्य जीवन का बरसाने का निवास है। वो जन्म जन्मांतर के करोड़ों पापों को नष्ट करेगा, हृदय में प्रेम की भक्ति और भक्ति का दीपक जलाएगा, और भगवान से आपको जोड़ देगा, और जीवन के अंत में भगवान के पास आपको पहुंचा देगा। इतनी शक्ति इस निवास में है, और ये निवास ऐसा है कि जो भी ब्रज में पहुंचता है, एक बार भी पहुंचता है, वो दोबारा इस दुनिया में वापस जन्म लेता नहीं है। लेकिन ये सब हमारे हाथ में है, ये सब वीजा की तरह है। हम जाते हैं किसी देश में तो वीजा लेते ना, लेकिन वीजा लेके क्या फायदा है, टिकट निकालना पड़ेगा ना आपको, तब जाके वहां पहुंचेंगे। 10 साल का वीजा है, लेकिन 10 साल में टिकट निकाला नहीं तो वीजा एक्सपायर हो सकता है और उस देश में आप पहुंच ही नहीं सकते। तो यहां पर आने के बाद में जो आपको आध्यात्मिक प्राप्ति हो रही है वो वीजा की तरह है, लेकिन करना जो है भक्ति वो आपको है, भक्ति पूर्ण सेवा जो करनी है वो टिकट की तरह है। जब वो आप करते रहेंगे तो इस जीवन में भी जीवन मुक्त हो सकते हैं, इस जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी परिपूर्ण भक्त सिद्ध अवस्था में आप रह सकते हैं, और फिर जीवन समाप्त होने के बाद में भगवत धाम में जाके भगवान के धाम में उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सारी पोटेंसी जो है इस जगह में अवेलेबल है, इसलिए उसको ऐसे कुछ कीचड़ कुछ सुअर ऐसे देख के उसको आप डिस्करेज मत होना, अरे क्या लाइट ही नहीं आ रही है, पता नहीं ब्रश करते करते लाइट चला गया, पानी गर्म लाया था वो लाते ठंडा हो गया, ये सब कुछ बाहरी स्थितियां हैं, इसके परे जाकर श्री वृंदावन धाम का दर्शन है, उससे हमको जुड़ना है। वो जो भगवान का नित्य धाम है वो यहां पर उपस्थित है, और वो नित्य लीला भगवान की है वो भी यहां पर चल रही है, हमको नजर नहीं आ रही क्योंकि हमारे आंखों पर माया का पर्दा लगा हुआ है, उसके परे ये नित्य धाम यहां पर उपस्थित है, लेकिन हम उसके बहुत पास में है, भले पर्दे के पीछे है लेकिन बहुत हमारे नजदीक में है, वो उसका पूरा लाभ लेना हमारा कर्तव्य है। और इस जगह का 5 दिन का 10 दिन का 15 दिन का 20 दिन का जो निवास है वो आपका बेड़ा पार कर सकता है, एक ही बार अनंत जन्मों का जन्म मृत्यु का जो श्रृंखला है उससे आप मुक्त हो सकते हैं केवल इसके कुछ समय के निवास के। लेकिन वो निवास कैसे करना चाहिए वो आपको देखना है। तो कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा मैं कि आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें निरपेक्ष सेवा कीजिए, कोई अपेक्षा मत कीजिए कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। निरपेक्ष होकर आप यहां पर आइए और निरपेक्ष होकर सेवा कीजिए। सेवा के बाद में जो समय बचता है चिरंतन भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज, कि मथुरा स्टेशन में उतरने के बाद तुरंत ही दंडवत प्रणाम करके हर क्षण हृदय के अंदर राधा रानी की परम कृपा के लिए याचना करते रहनी चाहिए। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप प्रेइंग फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी एट द हार्ट ऑफ योर हार्ट्स। जितने भी समय आप यहां पर हो, मन को यहां वहां भटकना नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए, कोई वेग आता है, कोई कष्ट होता है तो उसको थोड़ा सहन करना चाहिए और मन को राधा रानी की प्रार्थना पर एकाग्र रखना चाहिए। और यहां पर कोई भी जो जरूरत की नहीं है ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। मुंबई में हम लोग करते रहते हैं ना, दुनिया भर का गॉसिप करते रहते हैं, गांव में कथा, बट इसको भक्ति का प्राप्ति करने के लिए यहां पर आना है। गांव में कथा बना सुनी सुनी बे, हाँ तो बेफजूल की बातें हैं वो नहीं करना चाहिए। मुख का इस्तेमाल सेवा के लिए जो बात करनी है वो करिए, उसके बाद भगवान का नाम लेते रहिए कंटिन्यूअसली, तो आप राजा रानी से जुड़े रहेंगे। और जो भी इंद्रियों का वेग आता है उसको सहन कीजिए, जो भी प्राप्ति हो रही है प्रसाद के रहने की, जो भी सुविधा मिल रही है उसका लाभ लीजिए और मन को शांत रखकर राधा और कृष्ण की भगवान की सेवा में लगा के रखिए। और जब समय मिलेगा भगवान का नाम लीजिए, उसका नाम पुकारिए। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं ना कीर्तन में पुकारो पुकारो, क्योंकि पुकारने की जगह ये, यहाँ पर शिव आदि सब लोग देवता आते हैं पुकारने के लिए, केवल महारानी श्री जी का ध्यान हमारे ओर आकर्षित करने के लिए पुकारते हैं वो, उसके लिए ये जगह है। हाँ सोना तो पड़ेगा हमको, रात को नींद थकेंगे तो सो जाएंगे, लेकिन जितने इस घंटे जागरूक है हृदय में उनको पुकारते रहिए आप। और जब कीर्तन होगा संकोच मत कीजिए, खुले दिल से खुले आवाज से रो रो कर पुकारिए उनको, तभी उनका ध्यान हमारी ओर मुड़ेगा, कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मेरी सहायता चाहता है। उनका ध्यान मुड़ेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक उनका दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ेगी ना कटाक्ष, तो भी हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए भागते हैं सुबह दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन भी होगा वास्तव रूप में। दर्शन कब होगा, जब सेवा में ब्रजवासियों को आप संतुष्ट करेंगे, जब सेवा करते हुए किसी का साथ में काम करने वाले का अपराध नहीं करेंगे उनको भी संतुष्ट रखेंगे, और जिसके लिए सेवा करने आए हैं उनको संतुष्ट करेंगे, और जब प्रसन्न होकर वो हंसेंगे तो ये समझना कि श्री जी वो दरबार में नहीं है, आपके सामने आकर आपके सामने मुस्कुरा रही है, आपके लिए आपके पास आएंगे वो सेवा देने के लिए, और वही वो दर्शन है जो आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है। तो ये भाव जो है ना, अरे नहीं मुझे पीलीभीतपुर जाना है, अरे मुझे तो प्रेम सरोवर में दिखाई नहीं है, लास्ट टाइम आया था प्रेम सरोवर मिस हो गया था, अरे मैं तो पहाड़ पर गया नहीं, मैं तो वो गैवरकुंड दिखा ही नहीं है, ये सब बातें जो है बाद वाली बातें हैं। सबसे पहला जो पावरफुल कनेक्शन है वो सेवा के माध्यम से, उसके बाद में दर्शन है। जब सेवा करके ब्रजवासियों को प्रसन्न करेंगे, उनका अनंत आशीर्वाद धन्यवाद प्राप्त करेंगे, उससे सबल होकर पुष्टि होकर जब हम जाएंगे तो हमारा दर्शन जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। सारा जो स्थान है यहाँ का पवित्र स्थान, उसकी कथा हम समझ पाएंगे, उसका सार समझ पाएंगे, उस सार को जीवन में उतार पाएंगे, ये सब कुछ तब होगा जब पहले सेवा करेंगे। इसलिए बेस्ट वे टू कम टू ब्रज इज टू फर्स्ट सर्व एंड प्लीज एंड देन टेक दर्शन, सबसे सर्वोच्च तरीका है ब्रज में आने का। यहाँ पर आना, सेवा करना, प्रसन्न करना, सेवा सेवाएं जिसकी सेवा करने आए उनको, उनका कृपा आशीर्वाद लेकर फिर दर्शन करने जाएंगे तो धाम जो है अपने आप को प्रकट करेगा, क्योंकि धाम भी एक व्यक्ति है। अगर उनके धाम की इच्छा होती तो अपना गौरव आपसे छुपा के रख सकते हो, आपको केवल कीचड़ी दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी धाम की कृपा होगी तो अपनी महिमा को विकसित करेगा, आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आप उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे उसको। तो धाम को अगर प्रमुख करना है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए तो सेवा एक ही माध्यम है, जिस माध्यम से हम धाम अपने लिए आपके लिए अपना महिमा प्रस्तुत करेगा। तो जहां पर संत लोग रहते हैं बाकी लोग आके सेवा करते हैं, वहां धाम अपनी महिमा को प्रकट करता है। और इसी धाम में जो लोग जहां बैठकर शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बलात्कार करते हैं, डकैती करते हैं, धाम अपनी महिमा को ढक देता है, वह आम जगह बन जाती है, क्योंकि धाम भी व्यक्ति है। इसलिए आप इस दिव्य धाम को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मजबूर कीजिए, लेकिन इस धाम को आप ऐसे बर्ताव करना सेवा के माध्यम से कि धाम स्वतः ही आपका आपके लिए अपनी महिमा को प्रकट करे। हाँ जो दो चार दिन का संग हो, दस दिन का संग हो, कोई बात नहीं। अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आज सुबह भी मैंने बहुत सबके लिए प्रार्थना किया है, सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कहा है कि जो भी यहाँ पर ब्रजवासियों की सेवा के लिए आए हैं वो सबको ऐसी शक्ति देना, ऐसी भावना देना कि उनकी सेवा से आप प्रसन्न हो जाएं और आपकी कृपा दृष्टि सब पर पड़े और आप सबका उनकी ओर से अनुग्रह प्राप्त हो जाए। ये मैंने हृदय से प्रार्थना किया और रोज करूंगा आपके लिए, बाकी तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, बैठ के आराम करते रहता हूँ, रोटी खाता हूँ और कुछ कुछ पढ़ते रहता हूँ। लेकिन प्रार्थना जरूर करता हूं। मैं जानता हूं कि प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। यहां पर बैठकर जो प्रार्थना करता है, क्योंकि यहां पर लोकल कॉल है ना, यहां पर एसटीडी कॉल नहीं है, इंटरनेशनल कॉल भी नहीं है, केवल एक पर्दा पीछे है बस, सब ठाकुर जिनको मिलना है और बहुत पास में है यहां पर, इसलिए थोड़ा सा जोर से पुकारेंगे ना तो सुनाई पड़ेगा उनको। यहां प्रार्थना की जगह है, यहां अंतर्भूत क्या कहते हैं उसको, इंटरनलाइज होने की जगह है, अपने आप के अंदर जाने जाकर अपने आप को खोजने की जगह है, अपने आप को पहचानने की जगह है और अपने आप को सही जगह पर रखने की जगह है। इसलिए प्रार्थना भी कीजिए, जो लोग आपके साथ में नहीं आए आपके परिवार के लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो भक्त आपके गुरु भाई नहीं आए उनके लिए प्रार्थना कीजिए, सबकी प्रार्थना सुनने के लिए बैठी है महारानी यहां पर। इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं इस भावना से कि आप सबको सही सेवा का भाव प्राप्त हो और आपकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाए, आपके हाथ से कोई अपराध न हो साथ में काम करने वालों का या ब्रजवासियों का, और पूरा का पूरा लाभ उठाकर ही आप यहां से धन्य होकर चले जाएं, ये हमारी हृदय से इच्छा है। इसीलिए मैं हम आपसे ये बात सब बता रहे हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके होने से यहाँ पर सब सेवा हो रही है और आप पर और कृपा बरसाने के लिए कर हमारे गुरुदेव दादानाथ महाराज यहाँ पधारेंगे और आप सबको कृपा करेंगे। ये भी हमारे पर कृपा ही है, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको आना है, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, सबको दर्शन देंगे। संत का दर्शन होने से जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाते हैं। योग्यता हमारी नहीं है, लेकिन एक शुद्ध भक्त का जो दर्शन होता है तो भगवान की कृपा से ही होता है और वो भगवान से हमको जोड़ देता है, तो ये हमारा परम भाग्य है। कल परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज आए थे, वो भी महान संत हैं, हाँ महान महान विभूति है वो, उनका जीवन चरित्र आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले 56 साल से यहाँ पर वो भजन कर रहे हैं, 12 साल की उम्र में आए थे, आज उनकी उम्र कितनी है, 75 साल अभी पूरे हुए दिसंबर में, इतने साल से मान मंदिर में बैठकर भजन कर रहे हैं वो। इसलिए मान मंदिर घैवर कुंड जगह जो है इतनी दिव्य अनुभव होता है वहां जाने के बाद, क्योंकि कोई संत ने वहां पर भजन किया है और धाम को अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरणा दिया है उन्होंने, इसलिए वहां पर धाम ने अपना पूरा लीला प्रकट किया है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो, आप सबका धन्यवाद है। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। इसको जरा शॉक प्रूफ है, कोई यहां पर आना, ये शॉक वाला है, इधर बैठो, बैठ कर रवि, रवि कहां है रवि, कुछ करो उसका इंतजाम। कृपया कृपया अपने अपने स्थान पे रुकिए। प्रभु जी हरि बोल, हरि बोल, डोंट गो प्लीज। देयर आर सम फ्यू अनाउंसमेंट फॉर द वॉलंटियर्स ऑफ द ओपीडी वार्ड एंड ओटी। कल हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं और आज की जो ओपीडी की सिनारियो था आई कैम्प का, थोड़ा डिसओरिएंटेड थे सुबह से कुछ कुछ लोग सेवा के बारे में, क्योंकि ये सब जो निकलता है क्योंकि आप लोग ओरिएंटेशन को अटेंड नहीं कर पाते हो। ओरिएंटेशन जो होता है राधा गोपीनाथ टेम्पल में हुआ और भक्ति वृंदावन हॉस्पिटल में भी होता है, वहां पे सब कुछ इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे सर्विस करते समय मिस्टेक ना हो, हा? और एक समय पे एक इंस्ट्रक्शन देने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जो पूरा दो तीन साल से आ रहे हैं, जैसे विजन की माता जी हो, इन लोगों को पता है रोज की सेवा, तो वो अच्छी तरह से स्मूथ फंक्शन कर रहे थे। जो नए आए हैं उनको मुझे और ओरियंट करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगता है ओपीडी वॉलंटियर्स जिनको कल सुबह 6 बजे मैंने बुलाया है और कुछ लोगों को 5 बजे भी बुलाया है, उनको उसी समय आना है और जो सेवा आज दी गई थी वही करना है। जो नए लोग ओपीडी की सेवा के आए हो गए आज, जिनका नाम ओपीडी सेवा लिस्ट में है, उनको कल गोरखनाथ प्रभु को सुबह मिलना है, हा? और अपना नाम देना है सेवा के लिए जो आज आए हैं। अगर जो आज आए हुए कोई है यहाँ पे, आज जो आए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स आ जाए आपका नाम ओपड़ी और रोटी में है, कोई है ओपड़ी में वाला?